अर्थ ब्रह्मचर्य धर्म आख्याति। अब ब्रह्मचर्य धर्म का व्याख्यान करते हैं। गाथा 403। जो परिहरेदि संगम महिलानं नैव पश्यदे रूपं कामकहादिनिरीहो। निवत्तो है नियत्तो, ठीक है, एक ही बात। कामकहादिनियत्तो नवविह बंभम हवे तस्। नवहा, ठीक, एक ही बात। जो महिलानं संगम परिहरेदी, जो महिलाओं की संगति का त्याग करते हैं, और महिलानं रूवम नैव पश्यदे, महिलाओं की सुंदरता को नहीं देखते। काम कहादि नियतो या निरीहो, काम संबंधी कथा अधिक से जो निवृत्त रहते हैं, यानी उन कथाओं के भी त्यागी होते हैं। तस, उन मुनि के पास नवहा बंभम या नवविह बंभम हवे, नव प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है, मन वचन काय और कृत कार्य तनुमुद्रा। तस्य मुनि नवधा ब्रह्मचर्य भवेत, उन मुनि के पास नव प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है, नव प्रकार ही कृत कार्यता अनुमत गुणित मनोवचन का यही कृत्वा, कृत कारित और अनुमत से गुणित कर देना किसको, मन वचन और काय, इनको लेकर के स्त्री संगम वर्जयति इति ब्रह्मचर्यम स्यात्। जो स्त्री संग का त्याग करते हैं वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मणि स्वस्वरूपे, ब्रह्म का अर्थ क्या है, स्वस्वरूप, उसमें कैसा है अपना स्वरूप, शुद्ध बुद्धैक रूपे, शुद्ध बुद्ध ही एक जिसकी परिणति या एक रूप है जिसका, शुद्ध चिद रूप है, शुद्ध चैतन्य रूप, परमानंदे परम आनंद स्वरूप, परम आत्मनि परम आत्मा जो स्वरूप है अपना, उसमें चरति गच्छति, उसमें चरण करते हैं, विचरण करते हैं, गमन करते हैं। तिष्ठत्यनुभवती इति, उसमें तिष्ठते हैं माने ठहरते हैं, अनुभवती उसको सम्यक ज्ञान से जानते पहचानते हैं, इसलिए परमानंदैकामृत रसम स्वादयति, परम आनंद ही हुआ एक अद्वितीय अमृत रस आत्मा का, उसका स्वादयति भुनक्ति इति ब्रह्मचर्यम भवति, उसका स्वाद लेते हैं, भुनक्ति यानी उसकी रक्षा करते हैं, वो ब्रह्मचर्य है। तस्य कस्य, वो कौन मुनि है, यो मुनि महिलानां संगम परिहरति, जो मुनि महिलाओं की संगति को छोड़ते हैं, स्त्रीनाम युवतीनाम देवीनाम मानुषीनाम तिरश्चीनाम च, स्त्रियों के संग को, युवतियों के संग को, देवियों के, मानुषी यानी मनुष्य पर्याय जिस संबंधी नारियों के, और तिरश्ची यानी जानवरों में जो स्त्री हैं उनके संगम संगतिम गोष्ठिम त्यजति, संगति को गोष्ठी को छोड़ देते हैं। वनिता संगासक्त शय्यासनादिकम परिहरति, स्त्रियों के संग से आसक्त माने जहाँ पर स्त्रियों के साथ श्रृंगार आदि चेष्टाएँ हुई हो, ऐसी शय्या और आसन आदि को भी परिहरति, छोड़ देते हैं। तथा महिलानां स्त्रीणां रूपम जगनस्थन वदन नयनादि मनोहरांगादि निर्लक्षणम रूपम, जो उनके सुंदर अंगोपांग है उनका निरीक्षण जो छोड़ देते हैं, नैव पश्यति, उनको सुंदरता की तरफ नहीं देखते, न नैव अवलोकयते, उसका अवलोकन नहीं करते। कथम भूतो मुनि, कैसे हैं वे मुनि, काम कथादि निवृत्त है, काम कथादिक से निवृत्त है, कामोत्पादक स्त्री कथा स्मरणा विरक्त है इति, काम को उत्पन्न करने वाली जो स्त्रियों की कथा है उन कथाओं के स्मरण से भी विरक्त है। ब्रह्मचर्य अनुपाल्यंतम हिंसादेव दोषा न स्पृशंति, ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाले मुनि के हिंसादिक दोष का स्पर्श नहीं होता। गुण संपदा श्रयन्ति च, और गुणों की संपदाएं उन मुनि का आश्रय ले लेती हैं। तथा अष्टादश सहस्र शील गुणा के इति उच्यन्ते। इसी प्रकार 18,000 जो शील के गुण हैं वो कौन से हैं उसके बारे में कहा जाता है। जो ये कर्णे सन्ना इंद्रिय भूमादि समणधम मूय अन्नोन्नी अभत्था 18 शील सहसाई। जो ये 3, कर्ण 3, संज्ञाएं 4, इंद्रियां 5, भौमादि 10 और श्रमण धर्म 10। फिर इनको अन्नोन नहीं अभत्था एक दूसरे से गुणित कर दो तो 18,000 शील हो जाते हैं। कैसे? तो अशुभ मनोवचन काय योगा शुभेन मनसा गुण्यन्ते इति त्रीणि शीलानि। अशुभ मन वचन काय के जो योग हैं वो शुभ मन वचन काय शुभ मन से गुणित करने पर 3 शील हो गए। फिर अशुभ मनोवचन काय योगा शुभेन वचनेन गुण्यन्ते इति 6 शीलानि। अशुभ मन वचन काय के जो योग है वो शुभ मन शुभ वचन द्वारा गुणित कर दो तो 6 शील हो जाएंगे। मैंने वो ऊपर के 3 और ये और 3 हो गए। फिर अशुभ मनोवचन काय योगा शुभेन काय योगेन गुण्यन्ते इति 9 शीलानि। फिर काय योग से भी उसका गुणा कर दो, 9 हो गए। तानि चतस्र भी, और इनको 4 आहार आदि संज्ञा फिर गुणितानि 36 शीलानि च, 36 शील हो जाएंगे, 4 से गुणा कर दिया। तानि पंच भी स्पर्शनादीन्द्रियैर गुणितानि, उनको फिर 5 स्पर्शनादिक इंद्रियों से गुणा कर दो तो 180 हो गए। तानि पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक साधारण वनस्पति द्वित्री चतुर् पंचेंद्रिय जीव रक्षण ही दशभिर गुणितानि, 10 प्रकार के जीवों की रक्षा के साथ उनको गुणित कर दो तो 180 का 10 से गुणा करने से 1800 हो गए। तानि फिर उनको उत्तम क्षमादि दश धर्मैर गुणितानि, उत्तम क्षमादिक मुनियों के 10 धर्मों से गुणित कर दो तो 18,000 शील हो जाते हैं। अथवा अब देखो 18,000 एक और तरीके से भी बनाते हैं, ये तो एक भंग हो गया। फिर 18,000 शील के दूसरा भंग देखो। काष्ठ पाषाण लेप कृता स्त्रियाँ, स्त्रियाँ 3 प्रकार की होती है, लकड़ी काष्ठ पाषाण अथवा लेप से बनाई हुई प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह से। तो इनका मनोवचन काय कृतकारिता अनुमत गुणिता 18। मनोवचन काय कृतकारिता अनुमत इस प्रकार 9 से गुणित कर दो 3 का तो 18 हो गए। नहीं, मन वचन का कृतकारिता अनुमत ये 6 से गुणित कर दिया 3 का तो 18 हो गए। फिर स्पर्शनादि पंचेंद्रिय गुणिता 90। स्पर्शनादि 5 इंद्रियों से 18 का गुणा कर दिया 90 हो गए। फिर द्रव्य भावाभ्याम गुणिता 80, और द्रव्य और भाव इनसे और गुणा कर दो इसको तो फिर 90 को 2 से गुणा कर देने से 180 हो गए। तो क्रोधादिक कषायश चतुर्भिर गुणिता, क्रोधादिक 4 कषायों से गुणित कर दो तो 20+7 720 हो जाएंगे। इत्यचेतन स्त्री कृत भेदा, ये अचेतन स्त्री से संबंध रखने वाले भेद हो गए। फिर सचेतन स्त्री कृत भेदा स्ते के, फिर सचेतन स्त्रियों के भेद कौन से हैं? देवी मानुषी तिरश्ची तीसरा अच्छा तीसरा स्त्री है, 3 स्त्रियाँ हो गई, देवी मानुषी तिरश्ची। अब नारकी नहीं होती है। नरक में क्या होता है कि न पुरुष होते हैं न स्त्री होते हैं, वहाँ पर सिर्फ नपुंसक होते हैं। नारक समूर्छिनो नपुंसकानी नियम है। तो यहाँ 3 पर्यायों में जो स्त्रियाँ हैं उनको ले लो। फिर कृतकारिता अनुमत गुणिता 9, कृतकारिता अनुमोदना से गुणित कर दो तो 9 हो जाएंगी। एते मनोवचन काय गुणिता 27, इनको मनोवचन काय से गुणित कर दो तो 27 हो गया। फिर एते ये स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ही पंचभिर गुणिता, 5 इंद्रियों के विषयों से गुणित कर दिए तो 35+100 135 हो जाएंगे। 27 को 5 से गुणित कर दिया 135 हो जाएंगे। फिर द्रव्य भावाभ्याम द्राभ्याम गुणिता है, द्रव्य भाव इन 2 से गुणित कर दो तो 135 का दुगुना कर दो 270। एते आहार आदि भी चतस्री भी संज्ञा भी गुणिता, फिर इनको आहार आदि 4 संज्ञाओं के साथ गुणित कर दो तो 1080 हो गया। एते अब इनको अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन क्रोध मान माया लोभ षोडशैर गुणिता, 16 कषायों के साथ गुणित कर दो तो तो अशीत्यधिक द्विशताग्र सप्तदश सहस्र भेदा 17,280 ये सचेतन कृत भेदा इति। अब इसमें वो जो ऊपर वाले भेद थे ना अचेतन कृत 720 उनको इसमें जोड़ दो तो एकत्रीकृता सर्वे उनको सबको इकट्ठा करने पर 18,000 बन जाते हैं। स्त्रीणाम कटाक्षवाणी न विद्ध सशूर कथ्यते, जो स्त्रियों के कटाक्षवाण का अर्थ होता है कि उनकी जो टेढ़ी दृष्टि होती है उससे जिसका हृदय प्रभावित नहीं होता वास्तव में वो शूरवीर है। ये कहते हैं जूर्ण विजाधि वियारम तरुणीयन कड़क बाण विद्धुवी सुचेव सूर सूरु रण सूरुणो हवे सूरु। जो तरुणीयन कड़क बाण विद्धुवी नवी वियारम जायते, जो तरुणी जनों के माने युवती स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से विद्ध होकर भी विकार को प्राप्त नहीं होते वही शूरों में शूर है माने वीरों में वीर है। रणसूरो नो हवे सूरो, युद्ध में जो बहादुरी दिखाने वाला है वो कोई बहादुर नहीं है, वो कोई शूरवीर नहीं है। सैव च शूर शूर शूराणाम विक्रमाणा विक्रमाकांत पुरुषाणाम मध्य शूर सुभट पराक्रमी अजेय मल्लो भवे। बोले कि वही शूरों में शूर शूर वीरों के बीच जो विक्रम अर्थात पराक्रम से आक्रांत पुरुषों के मध्य शूर सुभट पराक्रमी अजेय मल्ल होता है। रण शूर संग्राम शौंडह, संग्राम में जो वीरता दिखाने वाला शूर सुभटो न भवेत, वो वास्तव में शूर नहीं हो सकता। संग्राम आंगणे अनेक सुभट जयकारी शूरो न स्यात्, संग्राम के आंगन में अनेक सुभटों को पराजित करने वाला वास्तव में शूर नहीं हो सकता। तरही कोसो शूरो, फिर कौन शूर होता है? तो यो मुनिर, जो मुनि भव्यो वा अथवा जो भव्य जीव जैसे सुदर्शन सेठ आदि थे। तरुणी कटाक्ष बाण विद्धोपी, तरुणी यानी युवावस्था में स्थित किसी स्त्री के कटाक्ष बाण, कटाक्ष बाण माने टेढ़ी दृष्टि, उससे विद्ध होकर भी तरुणी जनानाम यौवनोन्मत्त स्त्री जनानाम जवानी से उन्मत्त जो स्त्री जन है उनके सलील हाव भाव विभ्रम राग चेष्टा विचेष्टित युवती जन समूहानाम नयनानी लोचनानी, जो लीला सहित हाव भाव और विभ्रम और राग की चेष्टाओं से विकृत चेष्टा वाली जो युवती जन है उनके समूहों के नयनानी जो नेत्र है नयन है लोचनानी तेषां कटाक्ष उनके कटाक्ष अपांग दर्शनानि टेढ़े दर्शन केकरा पाता हूँ तैव बाणा, वो उसी को बाण की उपमा दे दी है। युद्ध के बाण अलग होते हैं और फिर ये बाण अलग होते हैं विकारों के। शराह तैर्विद्ध, उससे विद्ध होते हुए ताड़ित हसन ताड़ित होते हुए भी विकारम विक्रियाम मन क्षोभम चंचलत्वम न याति, विकार को विकृति को मानसिक क्षोभ को चंचलता को न याति नहीं प्राप्त होते न प्राप्त होती। सैव शूर शूर, वही शूरों में शूर है अजय मल्लो भवेत, अजय मल्ल जिसको कोई जीत नहीं सकता। उक्तं च कहा भी है शंभु स्वयंभु हरयो हरिणीक्षणानां येनाक्रियन्त सततं गृहकुंभ दासाः वाचामगोचर चरित्र पवित्रताय तस्मै नमो बलवते। अभी करना नहीं नमस्कार, ये एक मतलब अलंकारिक छंद है, यहाँ भगवान को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। मकर ध्वजाय, ये एक अलंकारिक है छंद कि उस कामदेव को नमस्कार हो। किस कामदेव को? कि जिसने शंभु यानी शंकर, स्वयंभु यानी ब्रह्मा और हरि यानी विष्णु इन सभी को गृहकुंभ दासा क्रियंत आक्रियंत, गृहस्थी रूपी कुंभ के दास बना करके रख दिया। माने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जिस कामदेव ने विवाहित कर दिया, स्त्रियों का दास बना दिया, और वाचाम अगोचर चरित्र पवित्रता है, और वचनों से परे कोई ऐसा विचित्र उसका चरित्र है कामदेव का उस बलवते बलवान कामदेव को नमस्कार। तो ये नमस्कार कोई भक्तिपूर्ण नमस्कार नहीं है, ये व्यंग्यात्मक नमस्कार है कि भाई तू कामदेव ब्रह्मा विष्णु से भी महेश से भी बढ़कर के, इसलिए तुझे पहले नमस्कार हो, इनको बाद में नमस्कार किया जाएगा, ऐसा है। फिर इसके आगे की कारिका में देखिए क्या क्या, ये भर्तृहरि के श्लोक लग रहे हैं। ये तो निश्चित ही मत्तेव कुंभ दलनी बुविसंति शूराः केचित् प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षाः किंतु ब्रवीमि बलिनाम पुरतः प्रसय्य कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्याः। मदमत्त हाथी के मस्तक को फाड़ने में इस धरती पर कुछ ऐसे वीर लोग हैं जो समर्थ हैं, यानी मदमत्त हाथी के मस्तक को भी वो चूर कर डाले, नष्ट कर डाले, फाड़ डाले, ऐसे वीर लोग भी धरती पर हैं। और कुछ ऐसे दक्ष हैं, कुछ ऐसे शूरवीर हैं जो प्रचंड मृगराज वजेपी दक्षा, भयंकर कुपित मृगराज यानी केसरी सिंह उसको मारने में समर्थ है, किंतु बलिनाम पुरतः प्रसह्य बलिनाम ब्रवीमी, लेकिन उन बलवानों के सामने मैं ये ताल ठोक करके चुनौती देता हूँ और कहता हूँ कि कंदर्प दर्प दलने विराम, कामदेव को जीतने वाले बहुत कम लोग हैं, इन्हें गिने लोग हैं, बिरले मनुष्य हैं। यानी ठीक है इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं लोग, लेकिन काम को पराजित नहीं कर पाते, सब काम से पराजित होते हैं। तावन महत्वम पांडित्यम कुलीनत्वम विवेकिता यावज्ज्वलति नांगेषु हतः पंचेषु पावकः। बोले कि तब तक मनुष्य के अंदर महानता रहती है, तब तक उसके अंदर विद्वत्ता रहती है, तब तक उसके अंदर कुलीनता रहती है, माने अपने कुल की मर्यादा रहती है, और तब तक उसका विवेक जागृत रहता है जब तक कामदेव का बाण उसको न लग जाए और उस बाण के लगने पर उसके शरीर में काम संबंधी अग्नि प्रज्वलित न हो जाए। काम की अग्नि प्रज्वलित हो जाने के बाद पंडिता ही नष्ट हो जाती है, महानता चली जाती है, कुल की मर्यादा समाप्त हो जाती है और विवेक भी भस्म हो जाता है। विकलयति कला कुशलम हसति शुचिम पंडितम विडम्बयति अधरयति धीर पुरुषम क्षणेन मकर ध्वजो वीरः। कामदेव क्या करता है, कला कुशल व्यक्ति को विकल बना देता है, बहुत बड़ा कलाकार हो लेकिन वो विकल हो जाएगा, बेजू बावरा। फिर हसति शुचिम, कोई बड़े पवित्रता का आडंबर करने वाला हो या फिर खूब साफ सफाई का ध्यान रखता हो तो उसकी भी खिल्ली उड़वा देता है कामदेव। वो कथा आती है ना कि उस पंडित ने उसका वेश्या का चाटा खा लिया था, बस वही बात है। फिर पंडितम विडम्बयति, और पंडितों की भी विडम्बना कर डालता है कामदेव। और धीर पुरुषम अधरयति, और धीर पुरुष को भी अधीर बना देता है, कितने समय में, क्षणेन, क्षण मात्र में। ऐसा मकरध्वजो वीर है, सबसे बड़ा वीर जो है वो मकरध्वज, उसने बड़े बड़े वीरों को भी धराशायी करके रख दिया है। इसलिए कहा कि जो उसको जीत ले काम को वो वीरों में वीर है, शूर शूर है। दिवा पश्यति नो घूकः काको नक्तं न पश्यति अपूर्व कोपि कामांधो दिवा नक्तं न पश्यति। उल्लू दिन में नहीं देखता, कौआ रात में नहीं देखता, लेकिन कामांध जो होता है वो कोई अपूर्व अंधा है जो न दिन में देखता है न रात में देखता है। तथा विचार्यताम, और भी विचार करने योग्य बात यह है, दुर्गंधे चर्म गर्ते व्रण मुख शिखरे मूत्र रेत प्रवाहे मांसाश्रि कर्दमाद्रे क्रिमिकुल कलिते दुर्गमे दुर्निरीक्षे विष्ठाद्वारोपकंठे उदविवरगल वायुधूमार्त धूपे कामांध कामिनी नाम कटितट निकटे गर्दवत्युत्थ मुहात। माने उस शरीर का विवरण करते हुए आचार्य कहते हैं, ये संभवतः पीछे देखना कहाँ का श्लोक है, दुर्गंधे चर्म करते, हो सकता है आत्मानुशासन का हो। दुर्गंधे चर्म ग्रंथ, नाम तो दिया नहीं है कौन से ग्रंथ का, इसी भाव वाले श्लोक आत्मानुशासन में आए हैं दो तीन। माने इतने अपवित्र स्त्री के शरीर में जो लोग मोहित होकर के विक्षिप्त जैसे हो जाते हैं, वो मनुष्य होकर के भी पशु तुल्य हो जाते हैं। यानी कामदेव मनुष्य को पागल बना देता है। यानी जैसे यौवन का मद आता है किसी मनुष्य पर, तो फिर उसके होश उड़ जाते हैं और फिर बाद में 8-10 तलाक देने के बाद कोई कहता है कि वो एक पागलपन था, फिर वो ब्रह्मचारियों को प्रणाम करता है और फिर साधुओं को नमस्कार करता है कि आप उसी समय समझदार हो गए, आपको मेरा प्रणाम हो कि आपने जवानी में उस विवेक को जागृत कर लिया, नहीं तो लोगों को बुढ़ापे में आ जाता है विवेक, आता जरूर है कोई सार नहीं उसमें, लेकिन सिर्फ जवानी का जो नशा रहता है, एक मद रहता है, उसमें उसके होश उड़ जाते हैं, विवेक चला जाता है, तो फिर वो उस गड्ढे में जाकर के कीचड़ में फंस जाता है। अतः दश प्रकारम धर्म उपसंहरति। अब ये 10 प्रकार का जो धर्म है मुनि धर्म, उसको समाप्त करते हुए कह रहे हैं, एषो दह पयारो धम्मो दह लक्षणो हवे नियमा अन्नो न हवदि धम्मो हिंसा सुमा विजत्थति। दस लक्षण वाला यह 10 प्रकार का धर्म ही धर्म होता है नियम से, और जत्थ सुहमा भी हिंसा थी, जिस धर्म में सूक्ष्म भी हिंसा होती है वह अन्य धर्म धर्म नहीं हो सकता। पुनः अन्यो न धर्म है, बाकी तो ठीक है, ऊपर की पंक्तियां संस्कृत में आगे जो लिखा ना, सांख्य बौद्ध नैयायिक जैमिनी जैमिनीय चार्वाक जैना भास आदि प्रणीत। अब देखो जैना भास कह दिया, पंचम काल में जैनों में भी जो शाखाएं बनी ना, जो अपने आप को मान तो रहे हैं जैन, लेकिन मूल मार्ग से उन्होंने एक अलग शॉर्टकट या कोई दूसरा रास्ता निकाल लिया, तो वो जैना भास कहलाते हैं। उनके द्वारा प्रणीत जो वेद स्मृति पुराण आदि कथित धर्मो वृषो न भवति न स्यात्, वो धर्म नहीं है और न हो सकता है। कुत्र कुतः क्यों नहीं हो सकता, यत्र धर्म में सूक्ष्म हिंसा सूक्ष्मो जीव वधो, जिस धर्म में सूक्ष्म हिंसा सूक्ष्म जीव वध, न चेतना चेतन प्राणी वधो न, क्योंकि चेतन और अचेतन प्राणियों का जो वध होता है, अचेतन प्राणियों का वध का अर्थ क्या लेंगे आप, अचेतन प्राणी किसको कहते हैं, स्टैचूज वगैरह चित्र वगैरह हैं, और जैसे दशहरा के दिन जो होता है कार्यक्रम वो है तो उसका भी निषेध होता है। अपिशब्दात स्थूल हिंसा जीवघातम, स्थूल हिंसा च नास्ति न नास्ति, गोमेध अश्वमेध गजमेध नरमेध आदिकम नास्ति सधर्म। ये सारे जो जानवरों की बलि चढ़ाने वाले यज्ञ आदि जिन धर्मों में है, वो जहां नहीं है, ऐसे हिंसक यज्ञ आदि अनुष्ठान जहां पर नहीं है वो धर्म होता है। अब इसमें फिर वो बात जिसका पहले समाधान हो चुका है कि जैन धर्म में भी जो पूजा होती है उस पूजा में बहुत सारे द्रव्यों का आरंभ होता है, तो उसके बारे में समाधान दे दिया जा चुका है कि हिंसा का त्याग भिन्न भिन्न श्रेणियों पर भिन्न भिन्न स्तरों में किया जाता है। यहाँ पूर्ण धर्म की अपेक्षा, पूर्ण अहिंसा की अपेक्षा देखो तो फिर मुनिराज के अहिंसा महाव्रत की चर्चा आती है। और गृहस्थ में क्या होता है कि संकल्पित त्रस का एक जीवों की हिंसा का त्याग करता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पूजा में जो हिंसा हो रही है उसका त्याग गृहस्थ जीवन में नहीं है। हिंसारंभो न सुहो देव निमित्तम गुरुण कज्जेषु, हिंसा पावंति मदो दया पहाणु जदो धम्मो। और फिर जो भी अपन हिंसा या अहिंसा की बात करते हैं उसमें प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा, इस परिभाषा को हमेशा ख्याल में रखना। नहीं तो क्या है कि मात्र जीव विराधना को जैन दर्शन में हिंसा नहीं माना गया है। मात्र जीव विराधना हो जाए तो उसको हिंसा नहीं माना गया है। जैसे मेंढक ने फूल तोड़ा और फिर पूजा के लिए चला गया समव शरण की तरफ, हाथी के पैर के नीचे आ गया, अगर फूल तोड़ना मात्र हिंसा होती तो फिर उस मेंढक को हिंसा का फल क्या मिलता? दुर्गति मिलती। लेकिन उसको कौन सी गति मिली? सदगति। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि मेंढक हिंसक था या नहीं था? नहीं था। उसकी भावना पूजा करने की थी। और फिर यह नियम है कि गृहस्थ जीवन में निरालंब पूजा हो नहीं सकती, निरालंब ध्यान केवल मुनियों को होता है। तो फिर गृहस्थ को किसी न किसी वस्तु का आलंबन लेना पड़ेगा। अब आलंबन किसका लेगा? आठ द्रव्यों का लेगा या फिर और किसी चीज का लेगा, ट्रांजिस्टर का या फिर वॉकमैन का? वॉकमैन ऐसे चढ़ा देगा क्या भगवान को जाकर के? नहीं, वो आठ ही द्रव्य होंगे जो भारतीय संस्कृति में सम्मान के प्रतीक माने गए हैं, लौकिक क्षेत्र में भी और पारलौकिक क्षेत्र में भी। तो आठ द्रव्य जो सम्मान के प्रतीक माने जाते हैं, जब भी कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उसको नहाने को कहते हैं जल, फिर चंदन गंध कहते हैं, चंदन को गंध भी कहा, जल गंधाक्षत पुष्प चरुवर, तो गंध है, सुगंधी भी दी जाती है। अभी आजकल तो पाउडर लगा लेते हैं ऐसे ऐसे या फिर परफ्यूम से ऐसे छिड़क लेते हैं, लेकिन वो एक हिस्सा है। फिर अक्षत है, जब उसका सम्मान करते तो यहाँ पर तिलक लगा करके उसमें चावल के दाने फिट करते हैं। कहीं भी देखो आप, किसी भी यहाँ गुजरात में देखो या फिर MP में या कहीं साउथ में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, ये सम्मान के प्रतीक है। और ये सिर्फ जिनेंद्र भगवान की चरणों में अर्पित करने वाले द्रव्य नहीं है, ये भारतीय संस्कृति में सम्मान के प्रतीक द्रव्य है। बस ये है कि इन द्रव्यों को भगवान के लिए अर्पित करते समय जो भावना होती है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आप किसी सम्मानित व्यक्ति का सम्मान करते हैं तब भावना अलग होती है, और देवशास्त्र गुरु के लिए अर्पित करते हैं तब भावना अलग होती है। चीज अलग नहीं होती, ठीक है ना, वो पदार्थ वही रहता है, आठ पदार्थ। तो फिर अक्षत हो गया, फिर पुष्प है, मालाएं पहनाते हैं। अब जो लोग विशेष अहिंसा की बात करने वाले हैं वो चंदन की वो लकड़ियों वाली माला पहना देते हैं। अब वो भी कहां से आई इसके बारे में विचार कर लेना चाहिए, वो कहीं आसमान से तो टपकी नहीं है या फिर किसी अपने पूर्व जन्म के संबंधी देव ने तो ला कर दी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं से तो आई है, और वो भी वनस्पति है। अब वो चाहे सुखा करके बनाई हो, कैसे भी बनाई हो, आई तो वहीं से, ठीक है, माला है। अब पुष्प है, पुष्प माला रखो या चंदन माला रखो, कोई भी माला रखो। लवंग की माला पहनाओगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। पहनाता है क्या कोई कभी सम्मान समारोह में? कभी किसी मंत्री को आचार्य के स्टेज पर लवंग की माला पहनाई किसी ने? नहीं। तो ये माल्यार्पण भी एक विधि है, और आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तो माला ही शब्द लिखा है। और फिर तीन भक्तियों में उन्होंने पुष्प शब्द का जो उल्लेख किया है वहां भी तात्पर्य वही है। क्योंकि क्या होता है कि आचार्यों के वचन अपने को सिर्फ एक जगह से शब्द पकड़ करके उसका तात्पर्य नहीं निकालना चाहिए, उन्होंने सर्वत्र क्या क्या कहा है तो फिर उसमें वो बात स्पष्ट हो जाती है। गंधमाल्य धूपादेह, सर्वार्थ सिद्धि में निकली थी पंक्ति, आपको अगर स्मृति में हो, जिनने सुनी हो, तो वहाँ माल्य शब्द दिया है, तो मालाओं से भगवान की अर्चना करता है, अर्थात लौकिक क्षेत्र में मालाओं के द्वारा सत्कार करता है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भी स्तोत्र सृजन, क्या सृजन का अर्थ क्या है? माला। कैसी माला? तो उसमें पुष्पों वाली माला बता दी। कौन से पुष्पों वाली? अक्षर रूपी पुष्पों वाले। स्तोत्र को अगर माला का रूपक दोगे तो फिर पुष्प अक्षर को ही बनाना पड़ेगा, और भगवान की पूजा करते समय जो आप करेंगे पूजा, तो फिर वहां पर दूसरे पुष्पों की माला होगी, वहां पर अक्षर रूपी पुष्पों की माला नहीं होगी, तो दूसरे पुष्पों की माला होगी। अब इन द्रव्यों का आलंबन गृहस्थ जीवन में क्यों अनिवार्य है? क्योंकि गृहस्थ का मन चंचल है, उसकी सर्वघाती कषायों का उदय है। जब तक उसको आलंबन नहीं मिलता, उसका मन कभी स्थिर नहीं होता। आप देखो अभी नमकार मंत्र की माला फेरते समय कहाँ स्थिर होता मन? हुआ है कि आज तक बताओ ईमानदारी से? भगवान के मंदिर में बैठे हो आप, तो मन बिना आलंबन के स्थिर होता ही नहीं, इसलिए ये सारे आलंबन लिए जाते हैं। फिर पुष्प के बाद क्या है? चरु है, नैवेद्य। जब भी कोई मेहमान आता है तो फिर मिष्ठान पकवान बनते ही नहीं। मैं नैवेद्य का अर्थ क्या होता है? चरु। चरु यानी चरु तो पर्यायवाची शब्द हो गया, उसका अर्थ क्या हुआ? मिष्टान्न और पकवान, इसको कहते हैं नैवेद्य। अब मिष्टान्न और पकवान बनते हैं, जब भी कोई मेहमान आता है, अतिथि आता है, तो फिर कोई ना कोई ऐसे आइटम बनती है। फिर त्योहारों पर बनते हैं, बनते हैं कि नहीं? दीपावली के दिन कुछ बनता है, रक्षाबंधन के दिन कुछ बनता है, और अलग अलग दिनों में जो भी ऐसे विशेष उत्सव के पर्व आते हैं, तब फिर ऐसे कुछ नैवेद्य बनाए जाते हैं। रोज न बनते हो कोई बात नहीं, लेकिन बनते रहते हैं समय समय पर। कभी संडे को बनते हैं, कई बार कुछ आइटम्स जो होते हैं वो संडे को बनाए जाते हैं, रविवार के दिन। तो इनसे भगवान की अर्चना करते समय भावना दूसरी होती है, और लौकिक सत्कार करते समय किसी को जब नैवेद्य खिलाते हैं तो फिर उसका मुंह मीठा करने के लिए या फिर उसको पकवान देने के हिसाब से खिला देते हैं, ठीक है ना? फिर नैवेद्य के बाद क्या है? दीप। तो दीप क्या होता है? दीप स्वागत करने के लिए सुकुमाल की माँ, आपने पढ़ा है कभी सुकुमाल चरित्र, यशोभद्रा सेठानी, जब राजा उनके घर पधारे, सुकुमाल के बारे में कुछ जानकारी मिली, तो राजा ने सोचा कि चलो हम भी देखने चलते हैं कैसा सुकुमाल है वो। तो जब वहां गए तब क्या हुआ? माता यशोभद्रा ने राजा का स्वागत किया। तो स्वागत कैसे किया? घी के दीपकों से। और कुंवर साहब का स्वागत कैसे किया जाता है? कुंवर साहब जानते हो, दूल्हे राजा, उनका भी स्वागत ऐसी घी के दीपकों से किया जाता है। अभी पता नहीं, अभी मॉडर्न जो क्या चेंजेस आए हमें उतनी करंट जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक पद्धति है भारतीय संस्कृति में स्वागत की। और दीपक के बाद धूप है, सुवास फैलाने के हिसाब से, वातावरण को खुशबूदार बनाने के लिए धूप का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अभी पिछली शताब्दियों से अगरबत्तियों का भी प्रचलन चल पड़ा, नहीं तो पहले लोभान या फिर गुगुल आदि कुछ पदार्थों से, और दशांग धूप, अगरु कपूर आदि सब मिला करके वो बनाते थे, अष्टांग धूप भी बनाते थे, तो उनके माध्यम से धूप का प्रचलन था, और घरों में हमेशा धूप प्रज्वलित रहती थी। घर में जो ईशान कोण होता था, ईशान कोण में देवस्थान रखा जाता था, और देवस्थान में शुद्ध घी का दिया और धूप, इनका प्रचलन। संध्यायाम दीप धूप युग, संध्या काल में भगवान की आराधना दीप और धूप से युक्त होती है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ये पद्धति थी, और इसलिए पहले आज की बनस्बत बहुत शांति थी परिवारों में। ऐसा नहीं है कि पहले सात व्यसन नहीं थे, व्यसन थे, और व्यसन जहाँ थे वहाँ पर परेशानियाँ भी थी। जिनके घरों में व्यसन होते थे वहाँ वो लोग परेशान रहते थे। लेकिन आम जैन जनता के बारे में अपन देखें तो जैन समाज का जो पिछले 50 सालों में पतन हो गया, वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। कारण क्या? कि जैन समाज में जब तक देवशास्त्र गुरु को शिरोधार्य करके उनकी आराधना की जाती रही, तब तक कभी भी ऐसी समस्या खड़ी नहीं हुई। लेकिन जब से जिनवाणी बिकने लगी, ध्यान से सुनना इस बात को, जब से जिनवाणी माता का विक्रय प्रारंभ हो गया तब से समाज का अधःपतन तीव्र गति से हो गया। जिनवाणी बेचने की वस्तु नहीं होती क्योंकि वो तो आराध्य है। माता को कभी बेचा जा सकता है? लेकिन जैनियों ने ये जघन्य पाप भी किया लेकिन उनको विवेक नहीं था, उनको ये बात उनके अकल में नहीं आई कि ये हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, और आज भी वो प्रक्रिया चालू है। तो जिनवाणी का जब तक विक्रय होगा तब तक समाज का उत्थान मुश्किल दिखता है। क्योंकि देवशास्त्र गुरु, एक बार क्या हुआ कि जब वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले आए मध्य प्रदेश में और वो पूछने लगे कि भाई यहाँ पर इस क्षेत्र में कितनी मूर्तियाँ हैं, पुरानी मूर्तियाँ कितनी हैं, कितने साल पुरानी हैं, कैसे क्या है, उसकी साइज़ क्या है, सारी बातें पूरी रिकॉर्ड में उन्होंने ले ली। लेकिन जब वजन लेने की बात आई तब फिर जैन समाज ने कह दिया कि हमारे भगवान अतुल्य है, उनको तोला नहीं जा सकता। वो तो नेमगिरी के पार्श्वनाथ भगवान के बारे में अनुमान है, किसी ने ऐसे तराजू पर रख करके नहीं देखा कि 9 टन वजन है, लेकिन अनुमान है। भगवान को तोला ही नहीं जा सकता फिर शास्त्रों को बेचा कैसे जा सकता? आ रहा समझ? तो ये पतन का कारण ये है। 50 साल में कितना पतन हुआ। अब देखो जैनियों के यहां कौन सा अपराध है जो बाकी रह गया? कोई बचा है अपराध? घोटाला में जैनी आ गए, कत्ल खाने में भी, मालूम है आपको रुद्रारम का हैदराबाद के कत्ल खाने के मैनेजर कौन थे? जैन। मतलब कौन सा जघन्य काम जैनों ने नहीं किया इन 50 सालों में? क्या कारण क्या बना उसका? मूल कारण पकड़ना चाहिए अपने को। क्या है कि अंदर की चीज पकड़ लो तो फिर बात पूरी खुलती है, नहीं तो आप कलिकाल को दोष दो तो ये तो दूसरों पर दोषारोपण हो गया। काल का दोष नहीं है, भाव का दोष है। काल का दोष तो पूरा 21,000 ईयर्स तक के चलने वाला दोष है, 21,000 साल का दोष है वो तो। और अभी ये 50 साल में जो दोष हुआ उसका कारण सोचो क्या है। और फिर ऐसे जैनियों का आहार जिस साधु को मिलेगा उस साधु से आप चतुर्थ काल के गुणों की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? साधु चौथे काल जैसे होने चाहिए, साधु में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अब श्रावक उनको आहार उस दर्जे का दे, मतलब पूरे अनिधि के कमाई का आहार दे साधु को, और फिर अपेक्षा ये रखे कि वो तो हमारे वो करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, ऐसे साधु होने चाहिए? कैसे संभव है? तो ये जितने लोग सुन रहे हैं इस बात को, ये जहाँ तक कि ये बात पहुँच जाएगी कभी भविष्य में, तो उनको इस बात में ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्रों का विक्रय हमारे निमित्त से कम कभी न हो। और फिर जितने लोग विक्रय करने वाले हैं उनको भी ये जानकारी देनी चाहिए कि जिनवाणी बेचने की चीज़ है क्या, पूछना चाहिए उनसे। अगर समझदार है तो, अगर अनाड़ी अंगूठा छाप है और फिर सड़क पर बैठा हुआ बेच रहा है उसको आप क्या समझाओगे? बल्कि शायद वो समझ जाए। अपने आप को समझदार समझने वाले ना समझ को समझाना मुश्किल। जो ना समझ है लेकिन अपने आप को समझदार समझता है उसको कौन समझा सकता है? तो ये सब हेतु बन गए। और क्या क्या नहीं होता बताओ। मेनका गांधी ने एक जैन युवक को शाकाहारी बनाया, बताओ। ये अभी ताजा खबर, पिछले कुछ सालों में ऐसी घटना हुई है। और फिर इंदौर में एक बहन जिस डेंटिस्ट के पास दांतों की पीड़ा का निवारण करने गई, दांत में कुछ फंसा हुआ था, जब डेंटिस्ट ने उसको निकाला तो मछली का कांटा निकला। कल्पना करो आप, सोचो। इंदौर की घटना है कि दांत में कुछ फंस गया था, निकाला तो फिर वो क्या निकला अब सोचो आप। शराब सिगरेट वगैरह तो मामूली चीजें हैं, जब माताएं बहनें भी इस प्रकार के कार्य करेंगी तो फिर क्या होगा भविष्य देश का? एक कहावत आती है इंग्लिश में कि मुझे उस देश की महिलाओं का स्तर बता दो, मैं देश को आंक लूंगा। यानी वहां की महिलाओं का चरित्र अगर मालूम पड़ जाए किसी को तो पता चल जाए कि देश कितना ऊंचा है। इसीलिए भारत पूज्य था क्योंकि यहां की नारियों में 100 में 1 सती, कल की चर्चा आपको याद हो यदि दोपहर की, इतना पवित्र देश था और आज, और इसका पूरा दोष जो है ये जिनवाणी बेचने वालों पर है, माने पूरे देश की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। क्योंकि एक जो चरित्र का स्तंभ था, राजीव दीक्षित ने बोला है कि हिंदुस्तान का जो चरित्र का स्तंभ है वो जैन समाज है, और अगर उस स्तंभ में ऐसी विकृतियां हो जाए तो फिर देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ वही जिन्होंने ये प्रवर्तन किया। शास्त्रों को बेचने की जरूरत क्या है? आप स्वेच्छा से लाख 50 लाख तक का दान दे करके उसका वितरण कराओ ना, और फिर अगर आपको उस पर कुछ लिखना है, क्योंकि आज का जमाना अमेरिकन संस्कृति आई है हिंदुस्तान में, वेस्टर्न कल्चर, तो उसके हिसाब से बिना पैसे की वस्तु को लोग फोकट की और फिर आदर योग्य नहीं मानते, तो फिर उसमें आप लिख दीजिए शास्त्र दान। मूल्य मत लिखना कभी, जिनवाणी पर मूल्य नहीं होता। शास्त्र दान आप मंदिर में डाल दो उतने पैसे जितने डालना हो, या फिर स्वाध्याय सहयोग या जो कुछ भी है उसके पुनः प्रकाशन के पुनर्मुद्रण के लिए जो भी राशि देना हो डाल दो उसको, लेकिन मूल्य शब्द बिल्कुल घोर अनर्थकारी है। कभी शास्त्र पर मूल्य हो ही नहीं सकता। शास्त्र का क्या मूल्य? अमूल्य का मूल्य? अरे अपनी माँ के ऊपर लिखता है क्या, इतने की है मेरी माँ, या फिर पिता के ऊपर मूल्य लिखा जाए? माता पिता के ऊपर कभी मूल्य नहीं लिखा जाता, तो फिर जिनवाणी माता के ऊपर मूल्य कैसे लिखा जा सकता है? तो हमसे कई बार लोग बोलते हैं कि आप ये सब चीजें पत्रिकाओं में दो, लेकिन पत्रिकाओं का स्तर देख करके हमें देने की इच्छा नहीं होती। उनका कोई लेवल नहीं है पत्रिकाओं का, वो कभी कुछ छापते हैं कभी कुछ और छाप देते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता कि कैसा क्या करना। ये तो जहां तक ये बात पहुंच जाए उनको सावधान करने के लिए है। तो हिंसा रूप आरंभ जो होता है वो कभी सुखकारी नहीं होता। देवों के निमित्त से या गुरुओं के कार्यवश कोई भी हिंसा होती है तो हिंसा पावंति मदा, हिंसा जो है वो पाप है ऐसा माना गया है। दया प्रधानो जदो धम्मो, धर्म जो होता है वो दया प्रधान होता है। तो दीप धूप, अब धूप जो होती है उसका भी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। घर को सुवासित किया जाता है, अथवा किसी उत्सव में विशेष रूप से कोई अलग प्रकार की धूप का इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रतिदिन नहीं, प्रतिदिन कुछ चलता रहता है, एक नित्य क्रम अलग होता है और फिर विशिष्ट उत्सव का क्रम अलग होता है, लेकिन ये द्रव्य जो है भारतीय संस्कृति के अनिवार्य द्रव्य हैं। फिर धूप के बाद फल है, अभी आज के जमाने में चाय है, पहले तो बाहर से मेहमान आते थे उनको फल तो खिलाते ही थे लोग, आम का मौसम हो तो आम खिलाते थे, अंगूर का मौसम हो तो अंगूर खिलाते थे, वरना बाकी दूसरे फल होते थे। और आज कोई भी मौसम हो एक चीज फिक्स, चाय। ये भी सत्कार की सामग्री है। तो चाय तो ब्रिटिशर्स ने एक व्यसन डाल करके चले गए वो यहाँ भारत में, आपको पता हो या ना पता हो, मुंबई में वो ठेले लेकर के निकलते थे, चाय मुफ्त में देते थे। वो जानते थे कि इसको पीते 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 ये हिंदुस्तानी गुलाम हो जाएंगे चाय के, अंग्रेज निकल जाएंगे, देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन ये चाय की गुलामी हमारा तोहफा इनके लिए हमेशा गुलाम बना करके रखेगा। तो चाय के गुलाम है आज हिंदुस्तान में, 99% लोग चाय के गुलाम। कुछ संप्रदायों में कुछ ऐसे वर्ग हैं जहाँ पर बहुत कड़क कानून है, जैन संप्रदाय में बहुत कड़क कानून है,